तारीख 11 दिसंबर दिन शुक्रवार। नमस्कार, भारत में अभिवादन स्वीकार करें समीर आत्मज मिश्र का। पेरिस में जारी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में फ्रांस ने पेश किया नया समझौता मसौदा।
Je pense que nous pouvons franchir à la veille même।
अमरीकी चरमपंथी डेविड हेडली को मुंबई हमलों में बनाया गया सरकारी गवाह। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे आज से 3 दिनों की भारत यात्रा पर, और फोन पर पोर्न भेजने से हो सकती है जेल।
अगर आप प्रकाशित करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, या प्रकाशन या ट्रांसमिशन में सहायता प्रदान करते हैं, तब आप कानून के घेरे में आ जाते हैं। 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रखते हैं।
कार्यक्रम में इन सब पर होगी चर्चा, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार फैसल मोहम्मद अली से। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरों फेबियस ने पेरिस में चल रहे पर्यावरण सम्मेलन में एक नया समझौता मसौदा पेश किया है। फेबियस का कहना था कि इसका मकसद शुक्रवार तक सार्वभौम, कानूनी और निष्पक्ष समझौते को तैयार करना है। इससे पहले सम्मेलन में विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध पैदा हो गया था। सीरिया में कई विपक्षी समूह सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए सहमत हो गए हैं। ये वार्ता अगले महीने हो सकती है। सऊदी अरब में 2 दिनों तक चली बैठक के बाद ये सहमति बनी है। विपक्षी दलों ने अपनी उस मांग को भी छोड़ दिया है कि किसी भी वार्ता से पहले राष्ट्रपति बशर अल असद को इस्तीफा देना होगा। हालांकि विपक्षी दलों का कहना था कि एक वैकल्पिक सरकार बनने की स्थिति में राष्ट्रपति असद और उनके सहयोगियों को पद छोड़ने की जरूरत होगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इस नए घटनाक्रम का स्वागत किया और कहा कि ये सीरिया में गृह युद्ध के खात्मे की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
This was an important milestone in getting to a place where in early January.
ये शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और जनवरी में होने वाली बैठक में दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक वार्ता संभव हो सकेगी। हालांकि अभी भी काफी कुछ किया जाना है। कुछ तो आज की बैठक में हुआ है और उम्मीद है कि कुछ जनवरी में होने वाली बैठक में हो सकेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि दोनों पक्षों को बातचीत के लिए तैयार करना, जो कि हो गया है। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी के शब्द। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की इस बात पर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि उसने परमाणु बम के साथ साथ हाइड्रोजन बम का भी निर्माण कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के एक प्रवक्ता का कहना था कि ऐसे दावे गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उत्तर कोरिया ने पिछले दिनों 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण भी किए थे। हाइड्रोजन बम इनसे कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। मुंबई पर 26 से 11 हमलों के अभियुक्त पाकिस्तानी मूल के अमरीकी चरमपंथी डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई की एक अदालत ने गवाह बनने के बदले कुछ शर्तों पर माफी दे दी है। हेडली को अमरीका से मुंबई की अदालत में गुरुवार शाम वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया था, जहां हेडली ने गवाह बनने के पहले माफी की मांग की थी। हालांकि मुंबई हमलों के लिए हेडली को अमरीका की अदालत पहले ही दोषी पाकर 35 साल की सजा सुना चुकी है। ईरान में अधिकारियों का कहना है कि स्वाइन फ्लू के वजह से पिछले महीने से अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री हसन हाशमी ने बताया कि ज्यादातर मौतें दक्षिण पूर्वी प्रांत करमान में हुई हैं। उनका कहना था कि सैकड़ों लोग इस बीमारी के कारण अस्पतालों में भर्ती हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की, जहां समझौते को लेकर एक नया मसौदा पेश किया गया है। दरअसल पेरिस सम्मेलन में मौजूद अमीर और विकासशील देशों के बीच समझौतों को लेकर मतभेद पैदा हो गए हैं। विकासशील देशों को लगता है कि अमीर देश समस्या से निपटने के लिए ज्यादा धन देने और साथ ही साथ कानूनी तौर पर बाध्य समझौतों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुना रहे हैं फैसल मोहम्मद अली।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में दुनिया भर के नेता पर्यावरण को बचाने के लिए मंथन कर रहे हैं। गरीब और अमीर देशों के बीच जारी गतिरोध के बाद फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरों फेबियस ने एक नया मसौदा पेश किया। नया समझौता मसौदा पेश करते हुए फ्रांस के विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि पर्यावरण के बारे में किसी अंतिम निर्णय पर پہنچا جا سکتا ہے. سمیلن کی سماپتی سے ٹھیک پہلے ہم لوگ کسی انتیم سمجھوتے کی اور بڑھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے میں یہ نیا مسودہ آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. یہ تھے لورونگ فیبیوس کے شبد. ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ انتیم مسودے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے. انہوں نے پرتنیدھیوں سے اپیل کی کہ سمجھوتے کو انتیم روپ دینے میں سہیوگ کریں.
Et nous savons que le compromis implique par nature.
ہم سبھی جانتے ہیں کہ سمجھوتے کے لیے سبھی کو اپنے ویکتیگت ہتوں سے اوپر اٹھ کر سبھی کے ہتوں کے بارے میں سوچنا ہوگا. سنکھیپ میں یہی کام اب ہم سب کو کرنا ہے. ہم لوگ ایک سمجھوتا چاہتے ہیں اور اسے انتیم روپ دینے میں ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں. اس لیے اب ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے آگے آنا ہوگا. یہ تھے فرانس کے ودیش منتری لورونگ فیبیوس کے شبد. فیبیوس کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پر شکروار تک کچھ انتم نرے لے لیا جائے. تازہ گھٹنا کرم کے بعد جانکار بھی امید جتا رہے ہیں کہ شاید کچھ بات بن جائے. کسی انتم سمجھوتے کی امید کو لے کر رات بھر وارتاؤں کا دور جاری رہا. اس سمیلن میں قریب 196 دیشوں کے پرتنیدھی بھاگ لے رہے ہیں. پچھلے 23 ورشوں سے ریو سمیلن کے بعد کئی انتراشٹریہ سمیلن ہوئے ہیں لیکن اب تک کوئی بات نہیں بن پائی ہے. بہرحال تازہ وارتاؤں کے بعد فرانس کے راشٹرپتی کاریالے نے بھی کچھ راحت کی سانس لی ہے.
تو جلوایو پریورتن سمیلن میں بنی سمجھوتی کی امید رپورٹ سنا رہے تھے فیصل محمد علی. اور اب بات سال 2008 میں 26 نومبر کو ہوئے ممبئی حملوں کی. ممبئی کی عدالت نے پاکستانی مول کے امریکی چرمپنتھی ڈیوڈ ہیڈلی کو اس معاملے میں سرکاری گواہ بننے کی سفارش کو منظوری دے دی ہے. ہیڈلی نے سلسلے میں حملوں سے پہلے ممبئی میں کچھ سمے بتائے تھے. سرکاری گواہ بننے کی سفارش ہیڈلی کی طرف سے آئی تھی. ممبئی سے اشوین اگھور کی رپورٹ.
ممبئی پر ہوئے 26/11 کے آتنکی حملوں کے آروپی ڈیوڈ کولمن ہیڈلی کو امریکہ سے ویڈیو لنک دوارا ممبئی کی وشیش عدالت میں پیش کیا گیا. اس پیشی کے دوران ڈیوڈ ہیڈلی نے عدالت کے سامنے یہ شرط رکھی کہ یدی اسے اپروور بنا کر سارے گناہوں سے معافی دی جاتی ہے تو وہ اس کنسپیرسی کے بارے میں ساری جانکاری بھارتیہ جانچ ایجنسیوں کو دے گا. اس کے پیچھے کون تھا, کس نے یہ سازش رچی تھی, کیسے رچی تھی, کہاں رچی تھی اور اس کا کاریانوین کیسے ہوا تھا, اس کے بارے میں پوری جانکاری دینے کا اس نے عدالت سے وعدہ کیا. اس کی اس مانگ کے بعد عدالت کی کارروائی آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کی گئی. وشیش نیادھیش اور وشیش سرکاری وکیل اجول نکم نے اس پر آپس میں وچار ومرش کر کے آدھے گھنٹے بعد یہ نرنے لیا کہ ڈیوڈ ہیڈلی کی مانگیں مانی جا سکتی ہے تاکہ اس کا استعمال آنے والے دنوں میں اس معاملے کی جانچ میں کیا جا سکے. آدھے گھنٹے کے بعد جب سنوائی پھر شروع ہوئی تو ابھیوجن پکش نے ہیڈلی کی مانگ کو سویکار کرتے ہوئے کہا کہ اسے معافی دی جائے گی بشرطے وہ اس معاملے میں پوری سازش کی جانکاری نیالے کو دے. سرکاری پکش نے شرط رکھی ہے کہ ہیڈلی کو اس معاملے سے سمبندھت سبھی ڈیٹیلز کورٹ کو بتانے ہوں گے تتھا اس معاملے کے پیچھے اس کا کیا ہاتھ تھا جس کی جانکاری بھی دے. عدالت نے کہا کہ ہیڈلی نے امریکہ کی عدالت میں قبول کیے سبھی جرم تتھا حملے کی جانکاری بھی دے دی جائے. ہیڈلی نے مانا کہ اس پورے حملے کی سازش رچنے والوں کی سبھی جانکاری وہ عدالت کو دے گا. اس حملے کی سازش رچنے کے لیے ہیڈلی نے 2006 سے 2008 کے بیچ ممبئی کے سبھی جگہوں کی ریکی اور شوٹنگ کی تھی جہاں بعد میں آتنکی حملے ہوئے.
یہ تھے اشوین اگھور. ڈیوڈ ہیڈلی کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے فیصلے سے اس معاملے کی جانچ پر کیا اثر ہوگا؟ کیا یہ فیصلہ دوسرے معاملوں میں بھی عدالتی کارروائی یا پولیس جانچ کو پربھاوت کر سکے گا؟ ہمارے سہیوگی اشوین اگھور نے یہی سوال پوچھے بامبے ہائی کورٹ کے وکیل ادے وارنجیکر سے.
یہ جو سچویشن ہے یہ سچویشن کئی کیسز کے بارے میں ایسی ہو سکتی ہے کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کرمینل جو بھی ہے ان کو بھارت میں لانا مشکل نہیں ناممکن ہو جاتا ہے. جی اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو سولوشن نکالنا ضروری ہوتا ہے اور وہ سولوشن مجھے لگتا ہے آج اس کیس میں ٹرائل کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ کسی ایکیوز کو اپروور بنانے کی या माफी उसको देने की जो भी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट करने की, ये कई दफा इंडिया में अमल हो चुकी है, जिसके द्वारा कई ऑफेंसेस प्रूव हो चुके हैं। वो बल्कि ट्रायल के लेवल पर जो भी केस की सुनवाई होती है उसमें ऐसा जो भी विटनेस का महत्वपूर्ण रोल होता है वो खुद बाकी लोगों का रोल बता देता है और देन ऑफेंस प्रूव हो जाता है। मगर ये इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में जो भी ऑफेंसेस है इसमें अप्रूवर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाया आज तक, क्योंकि अप्रूवर जो भी बनने के लिए कोई वैसे तैयार नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके से और एक अलग सा एक अप्रोच और एक अलग सा वे ऑफ कन्विक्शन हम इसके द्वारा देख सकते हैं। एक्सट्रैडिक्शन के बारे में जो बातें चल रही है, ये अक्यूज जो भी है इनको इंडिया में लाने के बारे में बातें जो चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए ये जो आज की जो स्टेप है, ये जो भी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है, इसको शायद थोड़ा और थोड़ा रुकते तो बेहतर होता, क्योंकि ट्रायल तो चालू है। ट्रायल कोर्ट के पास बहुत से जो भी अलग अलग पावर्स है उसका इस्तेमाल करते हुए इन ये जो एक्यूज है इनको हम ला सकते थे।
ये थे बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील उदय वारुंजीकर। हेडली को अमरीकी अदालत पहले ही 35 साल कैद की सजा सुना चुकी है। अमरीका में डेविड हेडली के वकील जॉन थाइस ने भी इस बात की पुष्टि की है। बीबीसी के वॉशिंगटन संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के साथ बातचीत के जरिए उन्होंने बताया कि डेविड हेडली वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। मैंने आपसे कुछ देर पहले ब्रजेश उपाध्याय से बात की और उनसे पूछा कि मुंबई में जो सरकारी गवाह बनाने की बात को मंजूरी मिली है उसका क्या असर होगा इस मामले पर।
देखिए, पहले तो डेविड हेडली के जो वकील हैं जॉन थाइस, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि डेविड हेडली वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए, और फिर उन्होंने कहा कि हेडली जो अब तक कह चुके हैं, या तो शिकागो में जब उन्होंने अपना पूरा बयान दर्ज करवाया था, उससे आगे कुछ नई बात कहेंगे उन्हें उसकी उम्मीद नहीं है। थाइस का कहना था कि हो सकता है कि भारतीय अधिकारी उनसे अबू जिंदाल के बारे में और जानना चाहें। जिंदाल को आपको जैसे याद होगा कि मुंबई हमलों का हैंडलर होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हेडली के वकील का कहना था कि उन्होंने जब अमेरिका में अपना जुर्म स्वीकार किया था उसी वक्त उन्होंने आगे किसी पूछताछ में अमरीकी और विदेशी अधिकारियों के साथ सहयोग करने की रजामंदी दे दी थी, और उनका कहना था कि अगर वो वीडियो लिंक के जरिए नहीं पेश होते तब वो उस करारनामे का उल्लंघन होता जिसके लिए उन्होंने अमेरिकी सरकार के सामने हामी भरी थी। और उन्होंने ये बात भी कही कि आज की इस पेशी से अमेरिका में जो उनकी सजा है वो 35 साल की सजा काट रहे हैं यहाँ पर, उस पर कोई असर नहीं होने जा रहा है।
ये थे बीबीसी के वॉशिंगटन संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय।
बीबीसी इंडिया बोल।
2002 के हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को सभी आरोपों से बरी किया। निचली अदालत ने सलमान को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि उसे मजबूत सबूत नहीं मिले। ये कोई अपनी तरह का पहला मामला नहीं है। सवाल ये है कि अगर सबूत ही पुख्ता ना हो तो अदालत क्या करेगी, चूक कहाँ, अदालत, अभियोजन, जांच एजेंसियां या फिर कहीं और। इस शनिवार बीबीसी इंडिया बोल का यही है विषय। मुफ्त फोन करें शाम 7:30 बजे 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, भारत आप सुन रहे हैं समीर आत्मज मिश्र से। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे 3 दिन की यात्रा पर आज भारत आ रहे हैं। वो यहाँ भारत जापान सम्मेलन में शामिल होने के साथ ही वाराणसी भी जाएंगे। प्रधानमंत्री आबे की भारत यात्रा के दौरान दोनों देश कई अहम समझौतों पर दस्तखत भी करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले साल जापान गए थे। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडबल्ली से पूछा कि दोनों देश इस दौर में कितने करीब आए हैं।
प्रधानमंत्री शिंजो आबे 2007 में जब भारत पहुंचे पहली बार, उस समय उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्पीच दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जापान के जो विदेशांग पॉलिसी आर्क ऑफ फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी के उन्होंने जिक्र किया उस समय। तो मुझे लगता है कि अभी दोनों देश में ये एक कंसेंसस बनी हुई है आर्क ऑफ फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी के बारे में। जो प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पहुंचे उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में भाषण दिया था। साउथ एशिया का बिना दूसरा देशों में पहली बार डेमोक्रेसी के बारे में कोई भी इंडियन प्रधानमंत्री ने कहा। मुझे लगता है कि शिंजो अबे और मोदी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज, जब प्रधानमंत्री टोक्यो पहुंचे तब $35 बिलियन का जापान ने भारत में इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हुए हैं अगले 5 साल में। तो आर्क ऑफ फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी, ये दोनों अभी मुझे लग रहा है कि इम्प्लीमेंट करने का स्टेज आ गई है।
इस दौरे पर जब वो आ रहे हैं और यहाँ पर इंडिया जापान समिट भी होगा, तो इस दौरान दोनों देशों के बीच किस तरह के समझौते हो सकते हैं?
बहुत सारे चीजों पे दोनों देश का एक अंडरस्टैंडिंग रही हुई है। पहली फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर और इंटरनेशनल लॉ के ऊपर दोनों का एक कॉमनैलिटी ऑफ व्यूज बनी हुई है। वैसे ही दोनों डेमोक्रेसीज हैं और ग्लोबलाइजेशन के एक ही मकसद है दोनों का। उसके अलावा $8 बिलियन का एक प्रोजेक्ट दोनों देश शुरू करना चाहते हैं। ये हाई स्पीड रेलवे, एक बुलेट ट्रेन के जो एक एग्रीमेंट अहमदाबाद से मुंबई तक, और उनका भी बहुत पहले 10 साल में कोई लोन का रीपेमेंट कोई है नहीं उसके। दूसरा चीज, ये कुछ 40-50 साल का जो प्रोजेक्ट है तब रीपेमेंट होगी, मतलब ये बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत फायदा होगा भारत के लिए। और एक चीज, US-2 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट का पहले 2-3 साल से इनके एक वर्किंग लेवल पे डिस्कशन हो रही है। भारत प्रधानमंत्री सिंगापुर के दौरान उन्होंने एक भाषण में मेंशन किया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो डिफेंस इंडस्ट्रीज में, ये 49% का जो कैप था वो भी निकाल दिया था और अभी शायद 100% का FDI लागू होंगे डिफेंस इंडस्ट्रीज में। इसका मतलब यह है कि एक US-2 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट का जॉइंट डेवलपमेंट भी शायद जॉइंट स्टेटमेंट में मेंशन कर सकते हैं। 7-8 वर्ष पहले जब भारत का प्रधानमंत्री तब मनमोहन सिंह और जापान का प्रधानमंत्री, उनका जॉइंट स्टेटमेंट में एक कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी के बारे में समय एग्रीमेंट हुई थी, लेकिन अभी तक कोई उसका प्रोग्रेस नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट में ये कनेक्टिविटी के बारे में भी दोनों देश का शायद एक मेजर अनाउंसमेंट होगी।
परमाणु क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग की क्या स्थिति है और क्या इस दौरान भी कोई घोषणा हो सकती है इस बारे में?
1945 में हिरोशिमा नागासाकी के दौरान जापान में एक पीस मूवमेंट, एक बहुत बड़ा लॉबी है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, और नेचुरली भी क्योंकि वो लोग के डिजास्टर के जो डैमेज देख चुके हैं और एक्सपीरियंस हुई है उनका, तो एक बहुत बड़ा लॉबी है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जापान के। मुझे लग रहा है कि ये इश्यू पे बहुत बहस हो रही है जापान में और ये शायद अभी कोई मेजर अनाउंसमेंट हो नहीं सकती है इसके बारे में।
ये थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडपल्ली, उनसे बात कर रहे थे हमारे साथी निखिल रंजन। कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे आज की विशेष रिपोर्ट का और खेल जगत की खबरों की चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं अखबारों पर। हमारे साथी दिलनवाज पाशा इस स्टूडियो में मेरे साथ हैं। जी दिलनवाज
जी, समीर आज जी आज आज जिस तरह से कल पूरा दिन खबरों में सलमान खान रहे, उसी तरीके से आज के अखबारों में भी सलमान खान ही हैं और अलग अलग सुर्खियां लगाई हैं अलग अलग अखबारों ने। हिंदुस्तान लिखता है सलमान खान बेदाग बरी, तो वहीं जनसत्ता लिखता है सलमान खान निर्दोष, और बगल में ही एक संपादकीय टिप्पणी में लिखा है गुनहगार शरीफ। शरीफ उस व्यक्ति का नाम है जो उस हादसे में मारे गए थे
जी।
और ये खबर अलग अलग अखबारों में, एक और खबर है जो जिसने सुर्खियां बटोरी है वो है डेविड कॉलमन हेडली के बारे में, जो चरमपंथ से जुड़ी घटनाओं के सिलसिले में अमेरिका में गिरफ्तार है।
कार्यक्रम में चर्चा कर ही रहे थे
जी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल वो भारतीय अदालत में पेश हुए और अदालत ने उन्हें गवाह मानते हुए आरोपों से बरी कर दिया है, यानी अब वो गवाह बनकर, सरकारी गवाह बनकर मामले की जाँच में मदद करेंगे। और एक और खबर जो कई दिनों से सुर्खियों में थी वो दिल्ली का प्रदूषण और उससे जुड़ी खबरें। तो प्रदूषण के कारण दिल्ली बदनाम हो रही है, ये टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, और दिल्ली सरकार ने कहा है कि प्रदूषण से निपटने के लिए जो सम विषम का फॉर्मूला ला रहा है, लोगों को दिक्कत ना हो, 6,000 नई बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी और मेट्रो को भी पूरी फ्रिक्वेंसी से चलाया जाएगा। इसी के साथ में एक और खबर है अखबार में जिसके मुताबिक बीजिंग ने जो 3 दिन में रेड अलर्ट बीजिंग में चीन की राजधानी में घोषित किया गया था, उसके बाद प्रदूषण के स्तर में कमी वहाँ पर आई है, तो ये एक और खबर है जो सुर्खियों में है। एक सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के उस कानून को बरकरार रखा है जिसके तहत सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पंचायत का चुनाव लड़ सकेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी
कम से कम 5 पास होना चाहिए।
जी उत्तर प्रदेश में भी ग्राम प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं, अंगूठा छाप भी उम्मीदवार है, मेरे गांव में भी 4 उम्मीदवार अंगूठा छापते, लेकिन हरियाणा के लोगों के लिए
चलिए अब हो सकता है कि सबक मिले और दूसरे राज्य भी इसका। बहुत बहुत धन्यवाद दिलनवाज पाशा अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब आज की विशेष रिपोर्ट। फोन पर इंटरनेट उपलब्ध होने यानी स्मार्टफोन के दौर से पहले पोर्नोग्राफी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो मैगजीन, वीडियो टेप, वीडियो सीडी, कंप्यूटर, लैपटॉप या वीडियो पार्लर के जरिए देखे जाते थे, लेकिन फोन पर इंटरनेट की सुविधा ने पोर्न को मानो आम इंसान के हाथ में पहुंचा दिया हो। लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि भारत के IT एक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पोर्न शेयर करना दंडनीय अपराध है। अब एक गैर सरकारी संस्था ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पोर्न बांटने के दुष्परिणाम क्या हैं और क्या इससे कोई फायदा भी है, इन सभी पहलुओं को टटोलती BBC संवाददाता दिव्या आर्य की ये विशेष रिपोर्ट।
दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। यहाँ 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और KPMG के ताजा सर्वे के मुताबिक इनमें से आधे से ज्यादा मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इस इस्तेमाल में पोर्नोग्राफिक तस्वीरें और वीडियो का आदान प्रदान भी शामिल है। स्मार्टफोन की लोकप्रियता और सस्ती होती कीमत की वजह से व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के जरिए पोर्न देखना और बांटना दोनों ही आसान हो गया है। पर कितने लोग समझते हैं कि ऐसा करना कानूनन अपराध है?
यही तो समस्या है कि भारतवर्ष में सारे लोग साइबर क्राइम करते हैं, जो पकड़ा जाए वो साइबर क्रिमिनल कहलाता है।
पवन दुग्गल साइबर मामलों के जानकार हैं।
क्योंकि लॉ कहता है कि अगर आप कुछ अश्लील इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को देखते हैं तो वो अपराध नहीं है, लेकिन अगर आप प्रकाशित करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं या प्रकाशन या ट्रांसमिशन में सहायता प्रदान करते हैं, तब आप कानून के घेरे में आ जाते हैं। धारा 67 जो है 3 साल की सजा और 5,00,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान रखती है।
अगर कोई व्यक्ति लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए अश्लील सामग्री अपलोड करे या बांटे तो उसे ढूंढना मुमकिन है, पर फोन के जरिए भेजी गई यही सामग्री की शुरुआत कहाँ हुई इसका पता लगाना बेहद मुश्किल। फिर फोन के जरिए सिर्फ साधारण वयस्क पोर्न नहीं भेजा जाता, बल्कि बच्चों से जुड़ा पोर्न और बलात्कार जैसी यौन हिंसा के वीडियो भी भेजे जा रहे हैं। हाल ही में मानव तस्करी के मुद्दे पर काम करने वाली हैदराबाद स्थित संस्था प्रज्वला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालकर कहा गया कि अगर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल बच्चों से जुड़े हिंसक यौन अपराधों के वीडियो बांटने के लिए किया जा रहा हो या पीडोफिलिया के मकसद से किया जा रहा हो तो इस वेबसाइट के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रज्वला की सह संस्थापक डॉक्टर सुनीता कृष्णन ने BBC को बताया,
I had requested the Supreme Court saying that why can't Facebook, which is the owner of WhatsApp,
हमने अदालत से दरख्वास्त की कि फेसबुक को निर्देश दें कि व्हाट्सएप के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद करें जो ऐसी सामग्री के बांटने को ना सिर्फ रोके बल्कि रिपोर्ट भी करे, और जब तक ऐसा ना हो व्हाट्सएप को बंद कर दें।
सुप्रीम कोर्ट ने बैन की बात से तो इनकार कर दिया, पर उचित कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इंटरनेट एक खुली दुनिया है जिसमें आप तय नहीं कर सकते कि किसे क्या देखने का अधिकार है। साधारण पोर्न देखना भारत में कानूनी तौर पर बाधित भी नहीं है, बल्कि सीमित मात्रा में देखे जाने को सेक्सोलॉजिस्ट सही मानते हैं। पर पोर्न अगर व्हाट्सएप जैसे ऐप्स पर चुटकुलों की तरह ही भेजा जाने लगे तो उसे कैजुअल नजर से देखा जाने लगता है। पोर्न बहुत ज्यादा देखना कई परेशानियां पैदा कर सकता है। भारत के बहुचर्चित सेक्सोलॉजिस्ट महिंदर वत्स बताते हैं,
देखिए जिसको आदत पड़ जाता है ना तो उनकी हैबिट इतनी हो जाती है कि जब उनकी कोई शादी होती है या इंटरकोर्स होना हो तो या तो कभी उनकी इच्छा में कोई फर्क पड़ जाता है या वो जब तक पोर्न ना देखे तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग। सो उसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी नुकसान पहुंचता है, मतलब वाइफ्स के साथ नहीं जाते हैं, ज़्यादा करके वो लोग पोर्न देख के सेटिस्फाई कर लेते हैं अपने आप को।
तो क्या चैट ऐप्स के जरिए बांटा जा रहा पोर्न सामाजिक और निजी रिश्तों को खोखला कर सकता है?
It's an odd sort of thing, right? It's both public and private, that clip.
डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर विशाखा दत्ता मुंबई के गैर सरकारी संगठन पॉइंट ऑफ व्यू की सह संस्थापक हैं। हाल ही में सरकार ने 800 से ज्यादा पोर्न वेबसाइट्स पर बैन लगाया और फिर वापस ले लिया। इसी से जन्मी बहस पर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की। वो कहती हैं कि ये समझना भी जरूरी है कि व्हाट्सएप के जरिए भेजी जा रही तस्वीरें या वीडियो एक छोटे या बड़े समूह को तो बांटे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें देखने या डिलीट करने का फैसला एकदम निजी है।
we think of sex as a private act.
शायद हमारी उलझन की जड़ ये है कि हम यौन संबंध को एक निजी अभिव्यक्ति समझते हैं और नग्न शरीर की तस्वीरें देख असहज हो जाते हैं। दुखद ये है कि मर्द पोर्न देखने में सहज हैं और महिलाएं अब भी शर्म महसूस करती हैं। यानी दोनों ही समाज के तय किए पुराने दायरों में फंसे हुए हैं, जबकि दुनिया ये समझ रही है कि मर्दों की ही तरह औरतों की भी सेक्सुअल डिजायर होती है और वो भी पोर्न से आनंद उठा सकती हैं।
इंटरनेट की खुली दुनिया के विस्तार से औरतों को भी पोर्न देखने की आज़ादी मिली है, क्योंकि अब ये एक गुप्त तरीके से किया जा सकता है। बहुत कम ही सही, पर अब कुछ ऐसी पोर्न फिल्में भी बननी शुरू हुई हैं जो सिर्फ औरतों के नज़रिए और खुशी को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं। कानून के इतर मर्द और औरत दोनों के सामने सवाल एक ही है, इंटरनेट से बदलती दुनिया में हमारे अपने और हमारे अपनों के लिए पोर्न का कितना और कैसा इस्तेमाल सही है। दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर लिखिएगा। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहेंगी।
जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आज भारत आ रहे हैं। वे 13 दिसंबर तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। शिंजो आबे की यात्रा भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता के लिए है। शनिवार को शिंजो आबे नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे। वाराणसी में शिंजो आबे के स्वागत की काफी तैयारियां की गई हैं। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बाद एनडीटी बेंच ने पिछले दिनों कई दिशा निर्देश जारी किए थे। दिल्ली में डीजल जनरेटरों को प्रदूषण का कारण मानते हुए सरकारी एजेंसियों को 11 दिसंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी थी। बेंच ने आदेश दिया था कि 11 दिसंबर को जब अनुपालन रिपोर्ट पेश हो तो उस समय संबंधित विभागों के सभी प्रमुख कोर्ट में मौजूद रहें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने में नाकाम होने पर सरकारी एजेंसियों को लताड़ने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने राज्य सरकार को सबसे अधिक प्रदूषित इलाकों को चिन्हित करने को कहा था, ताकि इस बारे में तत्काल एडवाइजरी जारी की जा सके।
और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। भारतीय खिलाड़ियों से सजे एक दिवसीय घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का कल से आगाज हो गया। हर किसी की नजरें इस टूर्नामेंट में खेल रहे भारतीय वनडे और T20 टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर लगी हुई हैं। हालांकि कल पहले मुकाबले में झारखंड की कप्तानी कर रहे धोनी ने निराश किया। जम्मू कश्मीर के खिलाफ मुकाबले में वो 24 गेंद खेलकर सिर्फ 9 रन पर आउट हो गए, जबकि झारखंड ने ये मुकाबला 5 रन से जीता। वहीं इसी टूर्नामेंट में दिल्ली के लिए खेल रहे भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने बड़ौदा के खिलाफ मैच में 25 रन की पारी खेली। उनकी टीम ये मुकाबला 31 रन से जीतने में कामयाब रही। भारतीय टीम से बाहर चल रहे ऑलराउंडर और पंजाब टीम के खिलाड़ी युवराज सिंह ने मुंबई के खिलाफ 93 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 6 छक्के लगाए। हालांकि मुंबई की टीम ने ये मुकाबला 5 विकेट से जीता। और वहीं भारत में होने जा रहे 2016 वर्ल्ड T20 से पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को टखने की चोट की वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट से बाहर रखने का फैसला किया है। इस साल इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज से ही स्टार्क टखने की चोट से जूझ रहे हैं। 25 वर्षीय स्टार्क हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल तेज गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने 25 टेस्ट मैचों में 91 विकेट चटकाए। और अब बात फुटबॉल की। चैंपियंस लीग की टीम चेल्सी के मैनेजर होजे मरेनो ने पोर्टो टीम के खिलाफ अपनी टीम की जीत के लिए खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। चेल्सी टीम को चैंपियंस लीग के नॉकआउट दौर में पहुंचने के लिए पोर्टो के खिलाफ ड्रॉ की जरूरत थी, लेकिन टीम ने मैच 2-0 से जीता।
मैच के नतीजे के अलावा मुझे खुशी है कि टीम को क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ एक अंक की जरूरत थी, लेकिन खिलाड़ी जीत के लिए खेले। जब दौर खराब चल रहा हो तो ऐसा करना आसान नहीं होता। खिलाड़ी दबाव में थे, लेकिन उन्होंने चुनौती का साहस के साथ सामना किया।
खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। और इससे पहले कि कार्यक्रम में आपसे विदा लें, एक नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर।
बीबीसी समाचार, अजय शर्मा से। फ्रांस की विदेश मंत्री लॉरेन फेब्यूस ने पेरिस में चल रहे पर्यावरण सम्मेलन में एक नया समझौता मसौदा पेश किया है। फेब्यूस का कहना था कि इसका मकसद शुक्रवार तक सार्वभौम कानूनी और निष्पक्ष समझौते को तैयार करना है। इससे पहले सम्मेलन में विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध पैदा हो गया था। सीरिया में कई विपक्षी समूह सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए सहमत हो गए हैं। ये वार्ता अगले महीने हो सकती है। सऊदी अरब में दो दिन चली बैठक के बाद ये सहमति बनी। विपक्षी दलों ने अपनी उस मांग को भी छोड़ दिया कि किसी भी वार्ता से पहले राष्ट्रपति बशर अल असद को इस्तीफा देना होगा। बीबीसी समाचार।
तो समीर आत्मज मिश्र को सभी सहयोगियों के साथ अब दें अनुमति, आपसे 8 बजे विश्व भारती में फिर होगी मुलाकात।